نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. عشرة ذی الحجہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس سے زیادہ تیزی ہمیں دکھانی ہے نیکیاں سمیٹنے میں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اس قدر پسند فرماتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے ان سے، اتنا بلند مقام دیتا ہے ان کو کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آپ کریں گے تو اتنی فضیلت ہے ان کی کہ یہ عشرہ گزر گیا نا تو بڑی بڑی نیکیاں بھی ان کے پائے کو نہیں پہنچ سکتی، اور یہ بات ہی اس قدر اسپیشل بنا دیتی ہے اس عشرے کو کہ اس کا مقابلہ سال کا کوئی اور دن بھی نہیں کر سکتا. سب دن ان بیسٹ دنوں کے سامنے کم ہیں مرتبے میں، مقام میں، اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اسی وجہ سے نیکیوں میں جتنی آپ دوڑ لگا سکتے ہیں لگائیے، جتنی آپ کی ہمت ہے لگا دیجئے، کیونکہ یہ دن جلدی ہی گزر جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا تھا تو بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کے گئے تھے. رب سے ملاقات کا شوق ان کو اتنا تھا کہ تیزی سے جلدی جلدی آگے بڑھ رہے تھے اور ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، مگر پھر بھی ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال فرمایا جو سورہ طہٰ آیت نمبر 83 میں آتا ہے، وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ آپ کو کون سی چیز آپ کی قوم سے جلدی جلدی آگے لے آئی؟ وہ تو پیچھے آ رہے ہیں ابھی، جو ساتھ جن کو لے کر آنا تھا وہ ابھی پیچھے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے آگے پہنچ گئے، تو کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنی جلدی کرائی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے اللہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، لیکن میں نے اس لیے جلدی کی ہے میرے رب کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، جو اتنے جلیل و قدر پیغمبر ہیں، وہ دوڑ کے کیوں آئے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے. آج کل بھی ہماری دوڑیں صرف اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ ہمارا کیا مقام، ہماری کیا نیکیوں کی حیثیت. مگر یہ شوق، یہ دوڑ، یہ جلدی دکھانا، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تو خوش ہو جائے، اے اللہ تو راضی ہو جائے. دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے. ہر نیکی کرتے وقت، چاہے چھوٹی سی کر رہے ہوں، ضرور سوچیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کو خوش کرنا ہے. اس کو میری کسی بھی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ میرا شوق دیکھتا ہے، وہ میری محبت سے کیے جانے والے کام دیکھتا ہے. جتنی ہمارے اندر تڑپ ہوگی اس کو خوش کرنے کی، اس کے آگے جت جانے کی، اس کو دکھانے کی، اتنی ہی اس کے اجر میں بڑھاوا آ جائے گا، بڑھوتری ہوگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن پاک میں کوٹ کر دیا. پہنچ تو جانا ہی تھا، موسیٰ نے آہستہ آہستہ بھی آتے تو پہنچ ہی جانا تھا، ان بزرگوں کو ساتھ لے کر آ جاتے، مگر انہوں نے اپنا جذبہ اللہ تعالیٰ کو دکھایا نا کہ اللہ مجھے کتنا شوق ہے تجھے خوش کرنے کا، مجھے کتنی تڑپ ہے، میں بھاگا آ رہا ہوں. تو میں اور آپ بھی صرف گنتیاں نہ کریں عمل کی، اتنا کر لیا، اتنا کر لیا، اتنا ہو گیا، اپنا جذبہ دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ دن بھر میں یہی کوشش ہو کہ کیا ایسا کر لوں، کتنی تیزی دکھا دوں، کون سا ایسا کام سر انجام دے دوں کہ اللہ بس مجھ سے خوش ہو جائے. लोगों मुझे छोड़ दो, मेरे पास टाइम नहीं है ना बहसें करने का, ना लड़ने का, ना फालतू बातें करने का, ना वक्त जाया करने का। मेरे पास नहीं टाइम, मुझे तो अपने रब को राजी करना है। आपने कभी छोटे मासूम बच्चों को देखा? उनके घर कोई उनका प्यारा चला जाए तो क्या करते हैं वो? भागते ही जाते हैं, कभी अपना कोई खिलौना ला के दिखाते हैं, कभी अपनी कोई उल्टी सीधी लकीरें खींचे हुए कोई कॉपी ला के दिखाते हैं, कभी भाग के जाते हैं, कोई अपना जूता उठा के ले आते हैं, बाबा ला ला के दिखाते रहते हैं चीज़ें। इसमें क्या होता है? उनकी चाहत कि वो आपको खुश करना चाहते हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। हमें भी अपनी खुशी दिखानी है कि अल्लाह तेरे महबूब दिन हमें मिल गए ना, हमें इतनी खुशी है इस बात की, हम तुझे भाग भाग के दिखा रहे हैं। अब वाकई हमारी ये जो काम हम कर रहे हैं ना, नेकी भी कहने के क्या लायक है, ये बस हमारी दौड़ ही है और कुछ नहीं है। तो हम भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बस दौड़ के दिखाएं अल्लाह को कि अल्लाह मैं जल्दी कर रही हूँ कि तू राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, हमें राज़ी कर दे। ये स्पेशल दिन है अल्लाह को राज़ी करने के, और वो तो है ही इन दिनों में नेकी को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला। तो जब उसके महबूब दिन है तो फिर उसके लिए इन दिनों में राज़ी हो जाना आसान है बजाय और दिनों के, बनिस्बत और दिनों के। और ये दिन ख़ास तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली की कुर्बानी को याद करने के दिन है। दो ही लोगों को अल्लाह ताला ने अपने खलील बनाया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और नबी अलैहिस्सलाम को। खुल्लत वो होती है, वो मोहब्बत जिसमें कोई शरीक ना हो। और ये कब बनाया था अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महबूब तरीन चीज़ अपनी बुढ़ापे की औलाद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं किया था, तब अल्लाह ताला ने उनको खलील बनाया था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बहुत स्पेशल बात हमें उनकी ज़िंदगी की पता चलती है, और वो ये है कि अल्लाह ताला के किसी हुक्म पर, आप देखेंगे, आप उठा के देख लें उनकी ज़िंदगी, किसी अल्लाह के हुक्म पे कोई चूँ चरा है ही नहीं। किसी मौके पे उन्होंने नहीं पूछा या अल्लाह क्यों, अल्लाह ऐसे क्यों, अल्लाह मेरे साथ क्यों, अल्लाह ये क्यों हो गया ना। बस रब का फैसला, सर वहीं झुका दिया। हत्ता के फिर रब्बुल आलमीन ने खुद तारीफ फरमाई उनकी, फरमाया सूरह बकरा में, रब तारीफ कर दे तो फिर और क्या चाहिए, दुनिया की तारीफें तो क्या चीज़ होती हैं। अल्लाह ताला फरमा दे ना, किसी को सर्टिफिकेट दे दे, उसकी तारीफ कर दे, तो बस उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने। अल्लाह ताला खुद फरमाते, इद قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين। एक ज़रा वक्फा नहीं, जब उसके रब ने उसको फरमाया मुती फरमा बरदार हो जा, फरमाया मैं मुती फरमा बरदार हो गया रब्बुल आलमीन के लिए। ये होती है फरमा बरदारी, ये होती है सबमिशन, कि अल्लाह ताला की हर बात के आगे खुद को झुका देना, सोचना नहीं, क्वेश्चन नहीं करना, मशवरे नहीं लेने, इससे पूछूं उससे पूछूं, ये करूं कि नहीं करूं, नहीं, बस करते चले जाना, अल्लाह का हुक्म आ गया ना। बुलंद मुकाम और मर्तबे ऐसे ही नहीं मिला करते। थ्रू आउट देखें, उनकी दिल में कोई तंगी नहीं आई, उन्होंने कोई हाय वाय नहीं की कि ऑलरेडी अल्लाह इतना काफ़ी नहीं हो गया कि मैंने इतना तो कर लिया, अब बेटे की भी कुर्बानी करूँ, अल्लाह और मैं कितना करूँगा, इनाफ नहीं हो गया कि मैंने बाप छोड़ा, ख़ानदान छोड़ा, कौम छोड़ी, आग में कूद गया, जन्ने को तैयार हो गया, वतन छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, दूध पीता बच्चा छोड़ दिया जो बुढ़ापे में मिला था, एक बंजर बियाबान वीरान जगह पे उनको अकेले तने तनहा डाल के आ गया, उनकी जुदाई बर्दाश्त की। लोग अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, चार दिन जुदाई नहीं बर्दाश्त होती, वो बियाबान जगह पे जिसके पता भी नहीं है कि यहाँ पे कोई, क्या पता कोई वैशी जानवर इनको फाड़ खाए, वहाँ पे उनको अकेले छोड़ के आ गए, ना कोई फ़ोन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, कुछ नहीं है। तो क्या अल्लाह काफ़ी नहीं हो गया? मगर वो क्या लोग थे कि जब कहा गया इब्राहीम, इस प्यारे बेटे को जिबा कर दो, रूह कांप जाती है सुन के भी। आज तो हमें पता है ना कि मींडा आ गया था, मगर अपने आप को उनकी जगह पे रख के जरा देखें। उनकी तो बुढ़ापे की औलाद थी, दुआओं से मिली भी औलाद थी। किसी की बुढ़ापे की ना भी हो और इकलौती औलाद ना भी हो, तब भी हर एक को अपनी औलाद कितनी प्यारी होती। और सोचे वो चल पड़े बेटे को जिबा करने के लिए। सूरह फुसिलत है, आप उसको जरूर एक दफा पढ़िएगा उसका तर्जमा। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए मेरे रब मुझे नेक औलाद दे। तो हमने उसको एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगे, तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, पजान जो हुक्म हुआ आपको उसको बजा लाइए। हम बेटा भी कितना फरमा बजा था, कैसा बाप और कैसा बेटा। बेटे को पता था ना कि मेरा बाप जो है ये अल्लाह का नबी है और इनके ख्वाब सच्चे होते हैं। अब इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अगर बेटे को कुर्बान करना मुश्किल था, तो बेटे के लिए भी गर्दन पे छुरी चलवाना आसान काम तो नहीं है। दोनों ने कितना सब्र दिखाया, उन्होंने हलीम बेटा मांगा था ना, हिल्म वाला, तो अल्लाह ताला ने बेटा भी कैसा दिया। तो कहते हैं आगे से, आप जो हो आपको हुक्म हुआ है ना, आप उसको पूरा करें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, गर्ज जब दोनों मुती हो गए, और देखें अब जब बेटे को लेकर चले हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शैतान बार बार रास्ते में आता है, कहता है इब्राहिम ये कहाँ लेके चले हुए बेटे को, बेटे को कुर्बान कर दोगे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के मारते हैं, और आज तक अल्लाह ताला लोगों से कहते हैं जमरात में जाके कंकरियां मारो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस याद में। शैतान इधर से कामयाब नहीं हुआ तो बीबी हाजरा के पास गया, देख इब्राहिम इस्माइल को लेकर कहाँ गया। अब बीबी हाजरा की भी ये वो औलाद है कि अकेली उन्होंने कितनी मेहनतों से पाली, एक सहरा में रहते हुए सिंगल मदर थी और उनकी इकलौती औलाद। छोटा बच्चा वैसे भी माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है। वो बोले कहाँ लेके गया है, बोला शैतान जिबा करने लेके गया है तेरे बेटे को। कहने लगी क्यों करेगा वो ऐसा, शैतान बोला वो कहता है अल्लाह का हुक्म है। तो कहने लगी अच्छा फिर अल्लाह का हुक्म है तो ठीक, मैं राजी। माँ देखें कैसी है, माँ का हौसला और माँ का कलेजा कैसा होगा। तो ये इम्तिहान बाप का भी है, बेटे का भी है, माँ का भी है। जब लेके चले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे समझदार बच्चे थे, अल्लाह अकबर। कि कहते हैं अब्बा जान जब आप मुझे ज़िबा करने के लिए लिटाएंगे ना, तो मेरा चेहरा सामने को ना रखिएगा कहीं। एक बाप की शफकत होती है ना, पिदरी मोहब्बत, अल्लाह के हुक्म के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। अब आप हौसला देखिए बच्चे का, कि बाप के साथ खुद चल के जा रहा है कुर्बान होने को। आज जानवर को भी जब महसूस हो जाता है ना, उसको भी छुरी नजर आ जाती है, उसको भी लगता है मुझे कुर्बान करने लगे, वो भी भागता रस्सी तोड़ा के। और ये बच्चा कैसा सब्र वाला है, बाप के साथ जा रहा है, बाजार नहीं जा रहा कोई गिफ्ट लेने के लिए, छुरी चलवाने के लिए गर्दन पे। तो अल्लाह ताला फरमाते इसी सूरत में कि फिर उसने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया, तो हमने आवाज दी, ए इब्राहिम यकीनन तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये खुला इम्तिहान था, यानी बहुत बड़ा इम्तिहान था, और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फ़िदिये में दे दिया। और वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फिर रहती दुनिया तक जितने आने वाले उनके लिए बाकी रख दिया, कि सब अब कुर्बानी किया करो, सब अब कुर्बानी करो। सलामुन अला इब्राहिम कदालिक नजज़िल मुहसिनीन। हाँ जी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सलाम हो इब्राहिम तुझ पे, सलाम हो, फिर ऐसे ही नहीं सलाम आ गया, अल्लाह सलाम भेजता है। और हम ऐसे ही बदला दिया करते हैं नेकोकारों को, यानी जो भी پھر اس میں اشارہ اس بات کا کہ جو بھی قربانی کرے گا اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی اس کا، ایسے ہی نہیں رکھ لیتا کسی کا احسان، اللہ اس کا دیکھو کیسے بدلہ دیتا ہے۔ اصل میں یہ امتحان تھا محبتوں کا، کہ اللہ نے دیکھنا تھا ابراہیم بیٹے کی محبت غالب تو نہیں آ گئی، اللہ کی محبت سے زیادہ تو نہیں بڑھ گئی، اور ہر محبت ثبوت چاہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اللہ تیری محبت، بیٹے کی محبت قربان ہے تیری محبت کے آگے۔ اس قربانی سے ہم بہت سبق سیکھتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز بھی قربان کرنی پڑ جائے نا تو دیر نہ کیا کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا، یہ وہ اپنی قربانی کر کے ہمیں سبق دے گئے کہ ذرا بھی دل میں پریشانی نہ لایا کرو، ذرا بھی دکھ نہ لایا کرو، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی ہو، جذبات کی ہو، خواہشات کی ہو، مرضیوں کی ہو، وقت کی ہو، صلاحیتوں کی ہو، بچوں کی ہو۔ دیکھو اللہ سے بچا بچا کے نہ رکھنا، وہ کچھ لے کے تھوڑا ہی رکھ لیتا ہے، وہ تو جہانوں کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ تو تم کو آزماتا ہے، تم اس کے لیے کچھ قربانی کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو جواب کیسے ملتا ہے، دیکھو وہ پھر مالا مال کیسے کر دیتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، پھر یہ ہوتا ہے۔ مگر ہم تھوڑ دلے ہیں نا، ہم ڈر جاتے ہیں، ہائے اللہ کے لیے یہ کیا تو کیا ہوگا، میرا اپنی اس خواہشات کا کیسے گلا گھونڈوں اللہ کی خاطر، میرا تو بڑا دل لگا ہوا اس چیز میں، ہائے اپنے شوق کیسے گیو اپ کروں، میرے تو بڑے ارمان ہیں، آئے اپنا وقت کیسے دے دوں اللہ کو، میرا وقت تو بڑا ہی قیمتی ہے، میرے پاس تو پہلے ہی وقت نہیں ہوتا، اپنے جذبات کیسے قربان کروں، اس دن کے لیے تو میں نے بڑی پلاننگ کی بھی تھی، نیند قربان کیسے کروں، نہیں صبح کو میرے سے تو نہیں اٹھا جاتا فجر کے لیے، اپنے پیسے کیسے دے دوں، میرے تو ابھی وہ اور بہت سے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں، اپنی زندگی کیسے لگا دوں اس کے لیے، زندگی کون سی مجھے بار بار ملنی ہے، ایک ہی بار تو ملنی ہے، وہ بھی اس کے لیے دے دوں۔ سوچیں ہمارے حال کیا ہیں، ہر چیز میں ہم اسی سے بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، اس نے یہ سب کچھ دیا نا، اس نے مال دیا، اس نے زندگی دی، اس نے صحت دی، اس نے صلاحیتیں دی، اس نے یہ اولاد دی، اور پھر اسی کے لیے کچھ لگانے میں ہم کتنے بخیل ہیں، ہمارے بھی کیا اسی طرح جواب ہوتے ہیں، اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہو گئی، اللہ تیرا حکم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کیسے تھے، کہ ان کا جواب کیا تھا، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تو نماز، میری قربانی، میرا تو جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس سچی صحیح تصویر اس آیت کی دیکھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس قربانی پہ بیٹا بھی واپس کر دیا، اجر بھی لکھ دیا، سلام بھی بھیجا، اپنا خلیل بھی بنا لیا، قیامت تک کے لیے اس امت کو بھی حکم دے دیا کہ میرے خلیل کی سنت کی پیروی کرنا، سب جانور ذبح کرو۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں نا، کتنا ضروری ہے قربانی کرنا، زیادہ ضروری ہے یا کم؟ تو آپ یہ باتیں سن کے خود اندازہ لگا لیں کہ قربانی کیسا عمل ہے۔ ہم اس دنیا میں ہر چیز کے ساتھ چمٹے میں، کسی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، ہماری وفاداریاں، ہماری محبتیں، ان کے بھی تو کوئی ثبوت چاہیے نا، ہم صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کر دیا تو ہم نے ایک بکرا دے دیا، الحمدللہ ٹھیک ہے دیا، لیکن نہ اس کو پالا ہے، نہ اسے کوئی انسیت ہے، نہ اسے کوئی پیار ایسا ہے کہ، تو اس لیے قربانی کرنا بھی آسان ہے۔ ارے ذرا بتائیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں پسندیدہ ہیں، ہماری محبوب ہیں ہماری، وہ کیا اللہ کی خاطر دے سکتے ہیں؟ جان کوئی نہیں مانگ رہا، نہ اولاد کی جان مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو پیاری ہے، مثلا آپ کا وقت ہے، وہ آپ سے مانگا جائے دیتے ہیں آپ؟ آپ کو دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا کہ سارا چھوڑ دو، ہاں آپ سے اگر قربانی مانگی جائے کہ ہاں اپنی کوئی صلاحیت اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنی نیند قربان کر دو، اپنے تھوڑی شاپنگ کا وقت قربان کر دو، اپنی جاب کی قربانی دے دو، کیا کرتے ہیں؟ हमसे तो एक इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दी जाती कि हमें कहा जाए कि भाई आप आपसे अब आप ये किया करें, आप ये दो डिशें ना बनाएं, चार डिशें ना बनाएं, एक डिश बनाया करें ताकि आपका वक्त बच जाए और आप दीन सीख सकें। हमसे तो वो कुर्बानी भी नहीं दी जाती। तो आज इस कुर्बानी से जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, कम अज़ कम हम अपने साथ ये अहद करें कि कोई चीज़ भी मेरे और अल्लाह के दरमियान आएगी तो मैं उसको कुर्बान कर दूंगी। पार्टीज, अगर मेरी पार्टी में जाने से अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ टूटता है ना, तो मैं पार्टी कुर्बान कर दूंगी। नॉट द एट द कॉस्ट ऑफ दीन, मैं कोई चीज दीन की कीमत के ऊपर नहीं करूंगी। ये अल्लाह का हुक्म कुर्बान कर दूं, पार्टी पे मैंने जरूर जाना है, शादी पे मैंने जरूर जाना है। अगर मेरी शॉपिंग करने से मेरी नमाजों का हरज हो रहा है ना, तो मैं शॉपिंग कुर्बान कर दूंगी, नमाज नहीं कुर्बान करूंगी। अगर मेरी जॉब से मेरे दीन में कमी आती है तो जॉब कुर्बान कर दूंगी, दीन ईमान में कमी नहीं बर्दाश्त करूंगी। अगर मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि उनके साथ बैठ के मैं अल्लाह से दूर हो जाती हूँ, तो मैं फ्रेंड्स को कुर्बान कर दूंगी, अल्लाह की मोहब्बत को नहीं कुर्बान करूंगी। और अगर घर के काम काज की वजह से दीन का इल्म नहीं मैं ले पा रही, तो मैं अपनी एक्टिविटीज को महदूद कर दूंगी, कम कर दूंगी, मगर इल्म की कुर्बानी नहीं दूंगी। तो ये जायजा लेने के दिन है, कहाँ पे हम खड़े हैं, हम क्या कुर्बान कर सकते हैं? हम भी अपनी कोई प्यारी चीज अल्लाह के लिए दे सकते हैं? क्या हमारी इतनी मोहब्बत है, हमारा इतना अल्लाह के लिए जज्बा है कुर्बानी का? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो ऐसा ताल्लुक था अल्लाह ताला के साथ, मेरा कैसा है? ये सोचने के दिन है। इतना बेढब ना चल के लौट के जाना, याद रखिएगा वापसी है। इतना बेढब ना चलें कि भूल के चले हुए, पता ही नहीं है कि लौटना है, याद ही नहीं है, ऐसा ना करें। तो इन महबूब दिनों में अपने अमल को बेहतर से बेहतर बनाएं, कुर्बानी देने की सतह पर आएं। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ें रह भी जाती हैं, कोई चीज़ें छूट भी जाती हैं, कोई मसला नहीं। कम से कम ये हम तो बड़ी कर कुर्बानी के हम तो काबिल ही कहाँ हैं। छोटी छोटी कुर्बानियाँ इनको करके भी हम अपने आप को चेक करें कि हम वाकई इस लेवल पर भी हैं कि नहीं, इतनी सी भी चीज़ दे सकते हैं कि नहीं। आजकल वक्त के बारे में हर कोई कहता है टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम बच्चे से भी पूछ लें वो कहता है टाइम नहीं है। आपकी भी कोई महबूब चीज़ होगी, हो सकता है टाइम ही हो, आप दे सकते हैं, निकालें थोड़ा टाइम फिर अल्लाह के लिए, उसके दीन को सीखने के लिए। आज उसके दीन को आपकी ज़रूरत है, आप लोग नहीं वक्त निकालेंगे तो कौन निकालेगा? इसी तरह अपनी नेकियों को बढ़ाएं। देखिए तौहीद के बाद फ़राइज़ में सबसे टॉप पे फ़र्ज़ है जो, वो है नमाज। और नमाज भी जो अव्वल वक्त में अदा की जाए, अबू दाऊद में हदीस आती है बेहतरीन अमल नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना है। तो जो फर्स्ट टाइम होता है ना, जो जैसे अजान हुई तो उसके बाद जो अव्वल वक्त है, कोशिश करें कि पहला काम अजान होने के बाद नमाज अदा कर लें। आगे पीछे नहीं भी होती तो इन दिनों में ज़रूर करें, सिवाय ईशा की नमाज के, उसके लिए बेहतर है थोड़ा सा डिले करना, मगर ये भी नहीं कि आधी रात ही गुजर जाए। आधी रात से पहले पहले, रात के जो पहला पहर है उसके एंड होने से पहले, ठीक है, उसको अदा कर लें। लेकिन बाकी नमाजें अव्वल वक्त में, इधर अजान हो उधर हम नमाज के लिए खड़े हों, तैयारी पहले से करके रखें। जितनी देर आप नमाज का इंतज़ार करते हैं ना, उतनी देर भी आप नमाज में ही काउंट होते हैं। कितनी प्यारी बात है ये, ठीक है। आप जितनी देर इंतज़ार कर रहे हैं नमाज, आपका आपका सवाब वही लिखा जाएगा। और जितनी देर आप नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठे रहेंगे ना, तो फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं। बुखारी में हदीस है, जब तक कोई नमाज के इंतज़ार में रहेगा उसको नमाज की हालत में शुमार किया जाएगा, और जब तक उस जगह बैठा रहेगा जहां उसने नमाज पढ़ी है, तो फरिश्ते उसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते रहते हैं, अल्लाहुम्मग़फिर लहू अल्लाहुम्मरहमहू, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह इसके ऊपर रहम फरमा दे। फरिश्तों की दुआएं मिल रही हैं आपको। तो ऐसे नहीं कि अभी इधर सलाम फेरा उधर भाग गए, नहीं, तस्बीहात कीजिए, तकबीरात पढ़िए, तसल्ली रखिए। हाँ, कुछ लोग नहीं कर सकते बेचारे, उनका जॉब होती है या बच्चे हैं या उनकी और जिम्मेदारियां हैं, मगर जिनके पास वक्त है, मौका है, तो क्यों क्यों नहीं इसमें गुजारते। इसी तरह अपने स्केड्यूल के अंदर कुछ ना कुछ और नवाफिल का इजाफा करें। याद रखें, फर्ज नमाज के बाद नवाफिल अदा करना अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है। हदीस में आता है, अल्लाह के आगे कसरत से सजदा रेज हुआ करो, कसरत से। अब फर्ज तो लिमिटेड है ना, फर्ज तो उतना ही है, आप फर्जों को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नवाफिल बढ़ा सकते हैं। और फरमाया, अल्लाह के आगे तेरा एक सजदा करने से अल्लाह ताला तेरा एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक खता मिटा देता है। एक दर्जा बुलंद होता है आपके हर एक सजदे पे, और एक आपकी खता मिट जाती है। तो अब हम फर्जों के अलावा कम से कम इन दिनों में, अब बाकी दिनों में अगर नहीं भी हमें मौका मिलता, तो कम से कम इन दिनों में हम कोशिश करें कि हम अपने नवाफिल बढ़ाएं। मैं हर दिन आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बताती रहूँगी कि आप किस तरह से अपने नवाफिल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें सुन्नत से साबित हैं। देखिए, एक तो है ना फ़राइज़, वो तो मस्ट है, मैंडेटरी है। उसके बाद लेवल आता है फ़र्ज़ों के बाद। ये नहीं होता कि कोई भी नमाज फ़र्ज़ से ऊपर चली जाए, ऊपर नहीं जा सकती। फ़र्ज़ टॉप पे है, उससे नीचे दर्जा किसका है, सुन्नत मौक्दा का। सुन्नत मौक्दा क्या होती है, सुन्नत मौक्दा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी है, कभी छोड़ी नहीं, ठीक है। और वो हैं दो सुन्नत, 12 सुन्नतें हैं ना वो दिन की, दो सुन्नत फजर की हैं, उसके बाद 4 सुन्नत जोहर से पहले और 2 सुन्नत जोहर के बाद, उसके बाद मगरिब के बाद 2 सुन्नतें और उसके बाद ईशा के बाद 2 सुन्नतें। पहले नहीं, ईशा से पहले कोई सुन्नतें नहीं हैं जो कि साबित हों। 2 सुन्नतें ईशा के फर्जों के बाद की हैं जो साबित हैं, जो मुअक्कद हैं। तो ये कुल 12 हो गई, इनका दर्जा है। और इसके बाद दर्जा है, और जो ये करेगा, जो इनकी पाबंदी करता है, हदीस में आता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाता है ये 12 सुन्नतें अदा करने से। उम्मीद है कि आप लोग करते होंगे, अगर नहीं करते तो अब से करना शुरू करें इन सुन्नतों की पाबंदी। जो ये भी कर लेता है, तो इन दिनों में खास तौर पे गैर मौकेदा सुन्नतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी पढ़ी, इसलिए कभी कभी पढ़ी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलरली पढ़ते तो कहीं ये ना हो जाए कि ये भी लाजिम हो जाए। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी पढ़ी, मगर उनका अजर कितना ज़्यादा है वो आप इनसे देख सकते हैं। जैसे मैं आपको आज एक और इजाफा बताती हूँ, जो है जोहर की नमाज में 2 मज़ीद सुन्नतों का इजाफा जो गैर मौकदा है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में नफल भी कहते हैं, ठीक है। हम अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, नफल। हो सकता है आप में से कोई ये पढ़ता भी हो, कि हदीस में आता है जिसने जोहर से पहले 4 सुन्नतें अदा की और जोहर के बाद 4 सुन्नतों की पाबंदी की। देखिए, क्या पहले 4 सुन्नतें और जोहर के बाद भी 4, तो अल्लाह ताला उसको दोजख पर हराम फरमा देगा। ये अबू दाऊद की रिवायत है, कितनी ज़बरदस्त ये बात है। अगर आप वो 2 नफल पढ़ते हैं दैट्स फाइन, अगर आप वो पढ़ते हैं ना 4 सुन्नत उसके बाद 4 फर्ज उसके बाद 2 सुन्नत जिसको आप 2 नफल कहते हैं, तो ठीक है आपकी वो हो रही है पूरी। तो इस इतनी बड़ी उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उसको दोजख पे हराम फरमा देगा, अबू दाऊद की रिवायत है, सुभान अल्लाह। इसी तरह आप एडिशन कर सकते हैं असर से पहले 4 सुन्नत अदा करने की, तो आप नबी अलैहिस्सलाम की दुआ के हकदार हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे के लिए दुआ की है। क्या इस वाली सुन्नतों को, ये भी गैर मौकेदा है, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो असर से पहले 4 रकात सुन्नतें पढ़ लें। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो देखें, अगर आप पहले जुहर की तो ऐसे पढ़ते ही थे, तो आज से आप असर की ऐड कर लें बाकी नमाजों के साथ साथ, कि मैं आपको इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह अगर आपकी ज़कात अभी पेंडिंग है, आपने रमज़ान में दी लेकिन पूरी नहीं दी, या कुछ लोगों ने रमज़ान में नहीं दी, तो ये भी बेस्ट डेज हैं ज़कात देने के लिए। क्योंकि क्यों है बेस्ट, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब दिन है, इनमें किया गया अमल बाकी दिनों में किए गए अमल से अफजल है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है, अल्लाह को ज्यादा उससे मोहब्बत है उस अमल से जो आप इन दिनों में करेंगे। तो बाज लोग सिर्फ सोचते हैं कि जकात बस देने का महीना रमजान ही है, ऐसा नहीं है। जब भी साल पूरा होता है तो आप जकात देते हैं। तो आप कि अगर मसलन है अगले 1-2 महीने में 3 महीने में जकात ड्यू है तो आप उसको पहले भी दे सकते हैं, इन एडवांस दे सकते हैं। तो क्यों ना इन दिनों में आप देते हैं, इन दिनों में जकात अदा कीजिए। इसी तरह आज जो आपको मैं जिक्र बताना चाहती हूँ, चूंकि ये दिन है अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करने के, ये दिन है अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करने के, तो इसमें सहाबा कराम से कुछ तकबीरात तो हम तक पहुंचती हैं, पर ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल बताया गया कि बस यही हैं और इसके अलावा कोई तकबीरात नहीं पढ़नी। और भी कलिमात हैं तकबीरात के, जैसे कि आज हम जो देखेंगे वो है अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर है सबसे बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाही कतीरा, अल्लाह ताला बड़ा है, मैं उस बड़े की बड़ाई बयान करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत ज़्यादा, यानी उसकी उसका शुक्र और उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा करती हूँ, वसुबहानल्लाही बुकरतन वासीला, और मैं उसकी पाकी बयान करती हूँ सुबह भी और शाम भी। वो पता है एक शख्स ने ये कलिमात कहे थे नमाज में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कलिमात को कहने वाला कौन है, लोगों में से एक आदमी ने कहा मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ताज्जुब हुआ, मैं हैरान रह गया कि आसमान के दरवाजे खोल दिए गए यानी इन कलिमात के लिए। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जब से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना मैंने इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा। तो नमाज में किस वक्त उन्होंने ये कलिमात कहे थे, यह पता है आपको, कि अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरा तवासीला, ये कब कहे थे उन्होंने, पूरी नमाज में कौन सी जगह है जहां पे ये कहने हैं। अल्लाह अकबर के बाद जब आप तकबीर कहते हैं ना, नमाज स्टार्ट करते हैं, तो हमें तो एक ही बात बचपन से सिखाई गई है, सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक का ये वाली आपने दुआ इस्तफ्ताह पढ़नी है, ठीक है वो भी सही है, लेकिन ये भी दुआ इस्तफ्ताह है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, यानी उसके साथ नहीं, उसके या तो ये पढ़ें या फिर सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक का वो पढ़ें, ठीक है। ये सूरह फातिहा से पहले, यानी जब आपने अल्लाह अकबर ही किया तो सबसे पहले आप तो सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा से तो नहीं शुरू करते, तो ये उसकी जगह पे ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने अल्लाह अकबर किया, नमाज शुरू की, और उसके बाद आपने पहली चीज जो पढ़ी वो पढ़ी अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कतीरा व सुबहानल्लाह बुकरा तवासीला। जिन बच्चों को, छोटे बच्चे अभी नमाज सीख रहे होते हैं, अगर सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वो वाली दुआ उनके लिए मुश्किल है याद करना, तो आप ये भी सिखा सकते हैं उनको, ये वो जल्दी सीख लेंगे, ठीक है। तो ये आपने तकबीर बुलंद करनी है। इसी तरह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी आप अपनी ज़ुबान पर जारी रखें, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसको भी जारी रखें, चाहे तीनों एक साथ कह दें, तीसरा कलमा ही पूरा कह दें, चाहे सुबहान अल्लाह कहते रहें, अल्लाहु अकबर कहते रहें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, इस तरह से कह दें, ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह से कह दें, तो इनकी तस्बीह अलग अलग से कर लें, तो जिस तरह से भी आप करें मगर ज़रूर अपनी ज़ुबान पर इनको जारी रखें। देखिए हम में से बहुत सारे लोग ना, चाहे जब से मैंने बताया है या शायद पढ़ के इधर उधर, हम सारा जोर क्या दे रहे हैं कि बस हम रोज़ा रख लें, और दुख इस बात का है अगर हम रोज़ा नहीं रख सकते तो बस इतना दुख हो गया कि आए रोज़ा नहीं हुआ। हालांकि ये रोज़े कोई फ़र्ज़ नहीं है। किसी ने मुझे ये भी ईमेल किया कि उनके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे थे और वो रोज़ा रखना चाह रही थी जिसकी वजह से घर में लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई से बेहतर है कि वो रोज़ा ना रखती। ये लड़ाई करना, बहस मुबाहसे और झगड़े, ये कोई फ़र्ज़ रोज़े नहीं है। हाँ मगर साले आमाल में से एक बेहतरीन अमल है, आप कर सकते हैं तो आप करें। बाज़ लोग अपनी सेहत की मजबूरी की वजह से नहीं कर सकते, बाज़ के किसी के हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहे होते, या बाज़ अपनी पीरियड्स की वजह से नहीं कर सकते, तो इतना दुख ना करें। याद रखें ये नेक आमाल में से एक बहुत अच्छा अमल है, मगर एक और अमल ऐसा है जिसकी नसें सरी मौजूद है उसकी तरफ हमारी ज्यादा नहीं तवज्जो जाती। इसकी तो नसें सरी मौजूद उस तरह से नहीं है कि भाई हाँ ठीक है अमाल में से है, मगर एक स्पेसिफिक इन दिनों के लिए है काम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि इन रोजे को ये नहीं बताया कि आप लोगों ने जरूर रोजा रखना है इन दिनों में, ऐसे नहीं फरमाया। मगर एक चीज है जो आपने हुक्म दे दिया कि इनमें करो, उसकी तरफ को तवज्जो ही नहीं है। नसे सरी क्या होती है? जो कुरान या हदीस से साबित हो, जो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फरमान दे दिया, और वो क्या है? वो फरमाया कि तकबीरात पढ़ो, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। वो तो सभी पढ़ सकते हैं ना, वो तो बीमार भी पढ़ सकता है, वो तो जो हस्बैंड जिसका रोजे से मना कर रहा है वो भी पढ़ सकती है, वो तो पीरियड्स वाली भी पढ़ सकती है, और लेकिन उसकी तरफ सुस्ती है। तो चुप नहीं रहना, एक दूसरे से मुकाबले करने हैं तकबीरात कहने में, उनकी खास तौर पे हुक्म दे दिया गया उसको पीछे डाला हुआ है, और सारा जोर रोजे के ऊपर है, चाहे कि चाहे घर में लड़ाइयां हो रही हैं, या सारा गम इसके ऊपर है कि हम रख नहीं सकते तो बस हमारा बड़ा नुकसान हो गया। भाई उधर नहीं कर सकते, तो ये जो हुक्म है उसको तो पूरा करो। इसलिए इसको ऐसे ही ना समझें आप कि भाई अच्छा चलो ठीक है पढ़ लिया, नहीं, ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा पढ़ें। मैं ये बस सोच रही थी कल, एक अपने दिल में ही ख्याल आ रहा था जब तकबीरात पढ़ रही थी, तो मैं कह रही थी अल्लाह जो जुबान तेरी बड़ाई बयान करे, अल्लाह उसको जलील ना करना दुनिया और आखिरत में, उसको रुसवा ना करना कि जो जुबान तेरी बड़ाई बयान कर रही। ये मेरा अपना ही ख्याल था। आप भी एक नीयत ये कर सकते हैं कि अल्लाह, अब अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं, नीयत तो नहीं कह सकते, कि अल्लाह से दिल में दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह से दिल में कह सकते हैं अल्लाह मैं तेरी बड़ाई बयान करती हूँ, तो अल्लाह तू मुझे ना रुसवा करना। इसी तरह आज की जो दुआ है वो भी इतनी प्यारी दुआ है, इतनी जबरदस्त दुआ है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये दुआ करके ना मैं सारी चीजें अल्लाह के हवाले मैंने कर दी। जामे दुआ है ये भी, और ये इस दुआ में हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है कि इसमें आजम भी हो, क्योंकि ये या हय्यू या कयूम से है, और बहुत सारे उलमा कहते हैं कि हो सकता है इसमें आजम यही है। तो अगर इसमें आजम है ये, तो फिर भी बहुत जबरदस्त बात है कि हमने इसमें आजम से अल्लाह से दुआ की, और जो दुआ की जाए वो कबूल होती। और दुआ क्या है? या हय्यू या कय्यूम, ए हमेशा जिंदा और हमेशा कायम रहने वाली जात, बी रहमतिका अस्तगीथ, तेरी रहमत के सबब से मैं फरियाद करती हूँ, अस्लिहली शानी कुल्लहू, अल्लाह मेरे सारे ही कामों को संवार दे, मेरे सारे काम ठीक कर दे। या अल्लाह अब काम हमारे कितने होते हैं, कहीं औलाद के काम हैं, उनके मसले हैं, कहीं घरों के और मसले हैं, कहीं शोहर के मसले हैं, कहीं नौकरियों के मसले हैं, कारोबारों के मसले हैं, कहीं किसी के इमिग्रेशन के मसले हैं, कहीं और किसी तरह की परेशानियां और मुसीबतें हैं, कहीं सेहत की हैं। या अल्लाह सारे कामों की बात कह दी ना, असली निशानी कुल्ला हो, सारे ही काम अल्लाह सारे ठीक कर देना। वला तकिलनी इला नफसी तरफा आईन, अल्लाह मुझे पलक झपकने तक के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना, क्योंकि नफ्स इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह मुझे इसके हवाले ना कर देना, मेरा नफ्स तो मुझे पता नहीं बर्बाद करके रख देगा। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, इसलिए कि हम सारे कामों को अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, इसमें सारे कामों को उसके हवाले कर देते हैं, और हम ये उससे दुआ करते हैं कि वो बस अब सब फिक्स कर देगा। ठीक है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमें तकबीरात मुसलसल कहने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए और कबूलियत वाले अमल करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होती है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।